नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल से लागू होने वाले अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की विकास गाथा को बदल देंगे और समाज के सभी वर्गों को इससे भारी लाभ होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए विनिर्माण को बढ़ावा दें। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता दी। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को पुनः हासिल करने की ट्रंप की धमकी को खारिज किया। देश में किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति का पुरजोर विरोध करने का प्रण लिया। और एशिया कप क्रिकेट में सुपर फोर के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधार नवरात्रि के पहले दिन कल से लागू होंगे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा और लोग कम कीमत पर अपनी पसंद के सामान खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की विकास गाथा इन सुधारों के साथ बदल जाएगी।
नवरात्रि के पहले दिन से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाया है। उन्होंने बताया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद राज्य और हितधारकों से परामर्श के बाद सरकार ने वस्तु और सेवा कर को वरीयता दी। श्री मोदी ने कहा कि नई कर संरचना के अंतर्गत केवल 5% और 18% कर दरें रहेंगी।
देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें या टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक राष्ट्र एक कर का सपना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग निर्धनता से उभरे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी को कर से राहत प्रदान की ताकि मध्यम वर्ग के जीवन में व्यापक सुगमता और सरलता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि नए मध्यम वर्ग की अपनी आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनके कर बोझ को आसान बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को दोहरा फायदा होगा। अब उन्हें सामानों और वाहनों के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि होटल में ठहरने की कीमत में कमी आने से पर्यटन भी कम खर्चीला होगा। श्री मोदी ने जीएसटी सुधारों के प्रति दुकानदारों की प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विनिर्माण के लिए भी अच्छे प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार का आह्वान किया कि वो स्वदेश का प्रतीक बने और प्रत्येक दुकान स्वदेशी सामान से सुसज्जित हो। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान में सक्रिय सहायता प्रदान करें और अपने अपने क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दें।
मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 5,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अरुणाचल प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं त्रिपुरा में प्रधानमंत्री तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के अंतर्गत माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की त्रिपुरा यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट।
नवरात्रि की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के तहत मंदिर की भव्यता और भी निखर कर सामने आई है। पुनर्विकसित संरचना में अब 2 मंजिले हैं, जिनमें एक मेज़नीन फ्लोर भी शामिल है। परिसर में अतिरिक्त जगह उपलब्ध होने से श्रद्धालु अब माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद और भी सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने किसानों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला से आम किसानों को अनियमित आय की समस्या से निकालकर निश्चित समृद्धि की ओर अग्रसर होने में मदद मिली है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार।
सरकार की प्रतिबद्धता बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि से परिलक्षित होती है, जो 2013-14 के 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वहीं पीएम किसान योजना के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार से वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूती मिली है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभार्थी अरुणाचल प्रदेश के जेमेंसु क्री ने क्या कहा है, आप भी सुनिए।
मुझे प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना से स्प्रिंकलर मिला है, मैंने आज उसको फिटिंग कराया। गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ कि इसे मुझे मेरा बागान को प्रोडक्शन और भी भरेगा। ये जो स्प्रिंकलर है, इसे काफी हमको मदद मिलेगा और प्रोडक्शन भी और बढ़ेगा, ऐसे उम्मीद में करता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा से लेकर किसान समृद्धि तक भारत की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, जो दूरदर्शिता पर आधारित है, कार्यों से पोषित है और अपने अन्नदाताओं के सपनों को साकार करती है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कथित रूप से जारी उस नोटिस के दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि हिंदी समाचार चैनलों को अपने प्रसारण में अत्यधिक उर्दू शब्दों का प्रयोग न करने और भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को भ्रामक बताया है। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा के बाद भारतीय नागरिकों की तत्काल सहायता के लिए एक आपातकालीन सहायता नंबर जारी किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दूतावास ने कहा कि आपातकालीन सहायता के लिए भारतीय नागरिक 1202-550-9931 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक वीडियो संदेश में घोषणा की कि ब्रिटेन फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे रहा है। उन्होंने इस कदम को शांति और द्विराज्य समाधान की आशा को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम बताया। एक रिपोर्ट।
कनाडा ने भी आज दिन में इस कूटनीतिक कदम का नेतृत्व किया और वह फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला G7 राष्ट्र बन गया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी की पेशकश कर रहा है। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही किया। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक संयुक्त बयान जारी कर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र के दौरान बेल्जियम और अन्य देशों के साथ फ्रांस के भी मान्यता की लहर में शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
अमेरिका ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उधर अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि एयरबेस पर अमेरिका के फिर से नियंत्रण स्थापित करने के किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 10 दिवसीय शारदीय नवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट।
धरती गगन होती है तेरी जय जयकार।
भारत नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में नवरात्र पर लगने वाले मेले के लिए खास तैयारियां की गई हैं। मेले को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध माँ विंध्याचल शक्तिपीठ में आज रात से शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो जाएगा। शारदीय नवरात्र मेले में विंध्य कॉरिडोर की भव्यता और बढ़ गई है। इस दौरान माँ विंध्यवासिनी का दरबार रंगीन लाइटों और फूलों से सजाया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए 4 प्रमुख मार्ग बनाए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
उधर गुजरात में भी नवरात्रि की तैयारियां जारी हैं। और खेलों में, दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत ने पाकिस्तान से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल से लागू होने वाले अगली पीढ़ी के GST सुधार देश की विकास गाथा को बदल देंगे और समाज के सभी वर्गों को इससे भारी लाभ होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए विनिर्माण को बढ़ावा दें। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता दी। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को पुनः हासिल करने की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को खारिज किया। देश में किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति का पुरजोर विरोध करने का प्रण लिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।